शांति। आज हमारे बीच में एक बहुत विशेष महान हस्ती परम आदरणीय पुष्पा दीदी जी बैठे हैं। सभी दीदी जी का स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय दीदी जी, उस महान धरनी पर वर्षों से सेवा करते हैं जहां पर हमारे परम आदरणीय दादी गुलजार जी वर्षों रहे हैं। इतने महान, इतना महान इनका भाग्य जो आज, और हमारा भी आज इतना महान भाग्य कि आज हम उनके समक्ष बैठे हैं और आप साकार ममा बाबा के सानिध्य में पालना लेते हुए बड़े हुए और देश विदेश में सेवा करते, महान बेहद की सेवाएं करते हुए आज दीदी हमारे समक्ष हैं और आज भी सेवा अर्थ आपके सामने भी और सोशल सर्विस विंग में भी आप आए हैं और खासकर उस स्थान पर आप हैं जहां पर हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी का भी आना जाना विशेष रहता था, तो उन सबके विशेष वाइब्रेशन आप सबको मिलेंगे भी। परमादरणीय जगदीश भाई जी भी और दादी गुलजार जी के भी वाइब्रेशन दीदी जी साथ साथ लेके आए हैं। और दादी गुलजार जी कहा करते थे कि चंडीगढ़ या पंजाब और दिल्ली भाई बहन का संबंध है, तो आज भाई बहन का संबंध से भी आज दीदी जी यहाँ पर हम सबसे मिलने आए हैं। तो दीदी जी आपका तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और आज दीदी जी का टॉपिक है सहनशीलता ही महानता है। इस टॉपिक पर हम सबको दीदी जी सुनाएंगे। आदरणीय पुष्पा दीदी जी।
ओम शांति। सबने बोला ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा की यादों में इतना समाये हुए हैं कि बहुत शांत अवस्था, ऐसे कहे ना, अंदर एकदम ऐसे आत्मा परमात्मा के साथ दुनिया में तो लीन कहा, लेकिन हम प्यार में याद में समा जाते हैं। और आज का विषय तो आप सबने सुन ही लिया, सहनशीलता से महानता आती है। अब ये शब्द ऐसा है, सहन करना बहुत अच्छा भी है लेकिन कईयों को बहुत बहुत मुश्किल भी लगता है। यही सबसे बड़ा देखा जाए वंडर है कि चाहते भी सभी हैं कि हम सहनशील बने और अधिक से अधिक बने, हमारी सहन शक्ति अच्छी तरह होनी चाहिए। सब चाहते हैं ना, बोलिए, सब चाहते हैं। जो नहीं कर सकता ना सहन, वो भी कहता है मैं तो बहुत सहन करता हूँ। कोई आप में से ऐसा नहीं होगा जिसको सहन करने का अनुभव ना हो, बोलो है कोई? एक बताए, मैंने जिंदगी में कभी सहन नहीं किया, कोई नहीं हा? भाई लोग सबने सहन किया है, हाँ या ना? हाँ भी ढीली बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो हा? नहीं, आप ठीक हो, रॉन्ग नहीं हो, दोनों बातें ठीक है। ना कैसे कह सकते हो, क्योंकि सबने सहन किया है हा? अब हाँ बोलो ना। हाँ क्यों ढीली बोल रहे हो मालूम है? इसीलिए तो आज का ये विषय रखा गया है, क्योंकि जितना आप चाहते हो कि ये हमारी इतनी बड़ी शक्ति हो, इतनी बड़ी क्वालिटी हो, उसकी थोड़ी परसेंटेज फर्क है ना, थोड़ा थोड़ा कहेंगे अभी उतना सहन जितना करना चाहिए, थोड़ा संकल्प आता है, तो इसलिए हाँ भी सबने इतनी जोरदार नहीं की। तो यही बाबा हम बच्चों को इसके लिए तैयार कर रहा है और एक प्रकार से तैयार है भी हा? जैसे एरोप्लेन चलने के लिए तैयार होता है और समझो सवारियां बैठ चुकी हैं, दरवाजा बंद हो चुका है और वो अपने उस पे रनवे पे आ गया है, उड़ना शुरू हो गया है, तो सहन शक्ति तो आप सब में इतनी आ गई है, बस अब वो फुल उड़ान में आ जाए कि फर्क ही ना पड़े कि सहन करना पड़ रहा है, महसूस ही ना हो कि सहन करना पड़ रहा है, जरा सी भी किसी भी बात की अंदर जरा भी तकलीफ ना हो कि मुझे सहन करना पड़ रहा है। बाबा ऐसे चाहता है, सहन करती हूँ या सहन करता हूँ ये एहसास फीलिंग भी हमें ना हो, नहीं राइट है ये बात? क्या समझते हो, ऐसे ही ना? क्या चाहते हो हा? हाँ, सहन हो गया ये पता भी न चले, इतनी हमारी आंतरिक सूक्ष्म ताकत बन जाए। और ये सब तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सहन सबको करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। इसीलिए आप सब ने जब हमने पूछा सहन के तो अनुभवी हो आप सब, तो सब चुप रहे, एक ने भी नहीं कहा नहीं नहीं हम अनुभवी नहीं है। आप सब ने जीवन में सहन किया है, टॉप टू बॉटम सब सहन करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी तो जीवन में सहन किया होगा या नहीं किया होगा, बोलो। अभी तो बड़ा अच्छी तरह बोला, तो फिर हम कैसे नहीं करेंगे, ये तो अंडरस्टूड है हा? करेंगे या नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा। मम्मा ने सहन किया होगा नहीं किया होगा, बोलो। खूब किया होगा, सिर्फ किया ही नहीं होगा, खूब किया होगा हा? बाबा ने भी खूब किया होगा, इसका मतलब है सबने किया होगा हा? जो भी मम्मा बाबा टॉप से लेके नंबर वन, तो हमारी दादियां, सब दीदियां, सब वरिष्ठ और सब बड़े छोटे, तो जो चीज करनी ही है, होनी ही है, सबने किया है, तो फिर मैंने कौन सी कमाल की? कोई को पूछो ना, थोड़ा सहन करो ना, मैं ही करता रहूं, ये शब्द निकल आते हैं। तो जब सबने किया तो मुझे भी करना ही है ना, तो फिर मैं ही करता रहूं का तो सवाल ही नहीं ना, करना ही है। इसमें तो कोई दो थॉट्स हो ही नहीं सकते कि करना या नहीं करना, या मुझे ही करना है, इसको नहीं करना है। माना हम सबको करना है, हर एक को करना है। ये तो हमारे जीवन की एक समझ लो नेचुरल नेचर हो कि हमें सहन ऑटोमेटिकली होता ही चला जाए, हमें महसूस ही ना हो मुझे करना पड़ता है, ये फीलिंग भी हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए सहन शक्ति चाहिए। और सहन ऐसी कहें वो शक्ति भी है, वो गुण भी है, वो संस्कार भी है, और वो हमारे जीवन की नेचुरल नेचर भी है। भगवान ने हमें उसे एक नेचुरल नेचर बना दिया है, तब हमें महसूस नहीं होगा कि मैंने सहन किया। तो मुझे इसके लिए अंदर की बहुत सेल्फ रियलाइजेशन, डीपनेस चाहिए, क्योंकि सहन एक प्रकार का तप है। हम बाबा की याद को तप समझते हैं, कोई वैसा तप नहीं है बाह्य, लेकिन आंतरिक आत्मा की टोटल शक्तियां, उसमें हम कैसे अपने आप को परफेक्ट करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, तो बाबा की याद से वो आती हैं। तो उतना ही हमारे अंदर, जैसे हर शक्ति की इम्पोर्टेंस है, हम सबको सुनाते हैं कि राजयोग से ये शक्तियां आती हैं, लेकिन सहन शक्ति हम सबके जीवन की एक बहुत इम्पोर्टेंट पावर, जो हमारे जीवन का तप दर्शाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी सूक्ष्म और स्थूल, आंतरिक और बाह्य, हमारी मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से पता चलता है। ये ऐसी प्रैक्टिकल पावर है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए, अपने आप को ये समझा देना चाहिए कि मेरे जीवन को निखारने वाली, जैसे तप मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारता है, पता चलता है ये एक तपस्वी आत्मा है, ये एक योगी आत्मा है, ये ज्ञानी आत्मा है। जैसे देखो, कई बार हम सुनते हैं, क्योंकि दुनिया वाले अज्ञानी मनुष्य उसी दृष्टि से आपको देखते हैं कि ये योगी हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, ये ज्ञानी हैं। अगर जरा सी भी थोड़ा कुछ ऊपर नीचे होता है, कहते भाई आप तो ज्ञानी हो, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खुद कुछ भी करे, जरा सी आप ऊंची आवाज में भी बोलेंगे, चाहे आप सच्चे हैं, लेकिन वो आपकी उसको सहन नहीं कर सकेंगे। तो आपसे इतना ज्यादा सहनशीलता का, इसीलिए सहन को शील कहा गया। शील माना ही चरित्र, शील माना ही जो हमारी चाल चलन से ऑटोमेटिक दर्शता है, पता चलता है, कहना भी नहीं पड़ता, पूछना भी नहीं पड़ता। सहन शक्ति ऐसी है। अन्य कई शक्तियां फिर भी सूक्ष्म है, निर्णय करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, इतनी जल्दी नहीं भी दूसरे को महसूस हो सकता, परंतु सहन शक्ति ऐसी है जो शीलता है। हमारा व्यवहारिक जीवन, हमारी चाल चलन, हमारी मनसा वाचा कर्मणा हर समय महसूस कराती है, खुद को भी اور دوسروں کو بھی. رائٹ ہے یہ بات؟ ہاں. تو وہ ہمارے جیون میں ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کی پرسنٹیج نہیں فل میں آتما ایسی بن جاؤں. سہن تو آپ سب کرتے ہی آئے ہیں اور سہن کیے بنا آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. پہنچ سکتے ہیں. سہن دیکھو آتماؤں کا بھی کرنا پڑتا ہے, لوکک بھی الوکک بھی, جو بھی سمپرک میں آئے گا بھن بھن سوبھاؤ سنسکار والے ملیں گے, سب کا سہن کرنا پڑے گا. سہن ستھان پرستھتیوں واتاورن سب پرکار سے کرنا پڑتا ہے. ابھی ابھی لائٹ چلی جائے تو بھی سہن کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا یا نہیں؟ کوئی بھی بات میں اس کا بہت وستار ہے, اس وستار کو میں نہیں سناؤں گی, لیکن ہماری سہن شیلتا بہت نیچرل ہو اور ایسی پاور ہو, جب کوئی چیز اپنی فل پاور پر ہوتی ہے تو اس کا پربھاو ہوتا ہے, دوسری باتوں کا پربھاو نہیں پڑتا. ایئر کنڈیشن بھی اپنی فل اس پر ہو تو گرمی باہر کتنی بھی ہو اس کا اثر پھر نہیں ہوتا. ایسے ہی ہماری یہ سہن کرنے کی شکتی اتنی پاور میں آ جائے, اتنی فل پرسنٹیج میں آ جائے اور ایسا ہمارا یہ گن بن جائے, جیسا ہم نے کہا یہ گن بھی ہے ایک, اور ایسا ہمارا نیچر بن جائے, سنسکار بن جائے کہ ہمیں کٹھن محسوس نہ ہو. اگر ہمیں سہن کرنے میں دکھ کی فیلنگ آتی ہے, کشٹ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے تھوڑا, کئی بار تو کئیوں کے آنسو بھی نکل آتے ہیں, بہن جی میں سہن کر کر کے تھک گئی ہوں. دادی پرکاش منی اس پر کہا کرتی تھی کہ اگر تم نے 10 بار سہن کر لیا تو 11ویں بار کیوں نہیں. 10 بار کر لیا اور اس کا گانا گا دیا, گانا گا دیا تو سمجھتے ہو نا, گانا گا دیا کس کو کہتے ہیں؟ سنا دیا. گانا تو سنایا جاتا ہے, بولتا ہے منشیہ تو ہی تو ہم سنتے ہیں نا گانا. گانا مانا ہی مکھ سے. ہاں. تو دادی پرکاش منی بہت اچھا کہتی تھی, کہتی تھی تم کہہ رہی ہو میں نے 10 بار سہن کیا تو اس لیے کہہ رہی ہو کیا میں ہی کرتی رہوں گی, تو 11ویں بار کیوں نہیں. جس کو 10 بار سہن کرنا آ گیا اس نے کر لیا, پھر 11ویں بار کیوں مشکل ہے؟ سوچنے کی بات ہے, سوچو ذرا اپنے آپ سے. اور جب 11ویں بار کر رہے ہو تو پھر 12, 13, 14 تو چلتے رہنا چاہیے. ہاں, چلتے رہنا چاہیے, پھر تو ہمیشہ ہی ہو جائے گا نا, کیا کٹھنائی ہے. تو بابا ہم بچوں سے ایسے چاہتا ہے. اب اس کے لیے بہت سہج پرشارت کیا ہے؟ واسطو میں تو اسے پرشارت بھی نہیں کہوں گی, سچ بتاؤں, کیونکہ بابا نے ہمیں یہ جیون ہی ایسی دی ہے جس میں آٹومیٹیکلی اس کے انوسار چلنے سے ہمارے اندر یہ پاور آ جاتی ہے. کیا برہمن جیون سے پہلے آپ اتنا سہن کرتے تھے؟ فرق آ گیا نا, آ گئی نا وہ پاور, انوبھوی ہو نا سب. ایسے اور اس انوسار ہم اس برہمن جیون میں کیسے چلیں جو یہ پاور ہماری 100% ہو جائے, ایک فل شکتی کا روپ لے لے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو بابا نے ہمیں اس ایشوریہ جیون کی پراپتیاں دی ہیں, ایشوریہ سکھ دیا ہے, ایشوریہ موج دی ہے, اس کے انوبھو میں جینا سیکھو. اس کے انوبھو میں رہتے ہو لیکن ہر سمے ہم اس انوبھو میں رہیں जब जीवन ही हमारी ब्राह्मण है, जीवन ही हमारी ईश्वरीय है, जीवन ही हमारी योगी है, तो उसकी जो प्राप्तियां हैं, उसकी जो रूहानी मौज है अर्थात आंतरिक सुख है, उसमें जियो, सहन में नहीं जियो। उस ईश्वरीय सुख में जियो। जैसे हमने सुनाया अभी आपको, अगर आप एयर कंडीशन में बैठे हैं तो आप उस एहसास में हैं, बाहर की गर्मी आपको असर नहीं कर रही। ऐसे ही मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसको ये ईश्वरीय प्राप्तियां निरंतर हो रही हैं। दुनिया में भी अज्ञानी मनुष्य जब कुछ मिलता है तो वहां सहन कर लेते हैं, स्वार्थी दुनिया चाहे, दुनिया तो स्वार्थी है, जब कुछ मिलता है भूख प्यास भी सहन कर लेते हैं, रात की नींद भी सहन कर लेते हैं, मान अपमान भी सहन कर लेते हैं क्योंकि कुछ मिलना है। बिजनेसमैन ग्राहक के आगे 10 बार गिड़गिड़ा भी लेगा, किसी के आगे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहेगा, है ना, घर में आते ही शेर हो जाएगा, ऐसे होता है ना लौकिक दुनिया की बात। आप तो बदल गए, आप भी पहले होते होंगे चाहे। तो कहने का भावार्थ ये है कि जब हम प्राप्तियों को सामने रखते हैं, और संगम युग की सबसे बड़ी प्राप्ति ईश्वरीय सुख है, कितनी माताएं कितना सहन कर लेती हैं, बांधेली माताएं मार खा लेती हैं फिर भी हंसती रहती, क्यों? कारण क्योंकि वो ईश्वरीय प्यार को महसूस करती हैं, उस ईश्वरीय सुख को महसूस करती हैं। कभी कष्ट भी लगता होगा तो जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी विस्मृति हो जाती है। हम जितना जितना ईश्वरीय सुख को महसूस करते जाएंगे, उसमें जीना कैसे है, उस जीवन की फीलिंग में रहेंगे, तो सहन करने का एहसास पता ही नहीं चलेगा। आपसे हो भी जाएगा सहन, आपको खुद नहीं लगेगा कि मैंने सहन किया। हमने दादियों को बहुत समीपता से देखा है, बहुत समीपता से, भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां उनके सामने भी आती हैं, और अजीब अजीब संस्कारों वाली आत्माएं भी उनके सामने आती हैं। बोलने वाला क्या बोल के भी चला गया जो बिल्कुल ठीक नहीं है, और दादी बड़े प्यार से कहती है, इसने क्या कहा, आपने समझा इस बात को? हाँ, दादी गुलजार बैठी है, हाँ, इतनी महान हस्ती, कहती ये क्या बोलता है, इसने क्या कहा, इतना नॉर्मल, इतना नेचुरल हर बात को वो लेते हैं। आप सोचिए, हमने कहा दादी ये बहुत कुछ बोल गया। ऐसा नहीं है कि दादी को समझ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी सोच ऐसी है, उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि वो किसी भी बात को नेगेटिव सोचते ही नहीं। हम तुरंत, भले किसी ने गलत कहा भी, हम तुरंत सोच लेंगे इसने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, ये मेरे लिए नेगेटिव सोचता है, ये ऐसी समस्या खड़ी करता है, तुरंत बुद्धि वैसी चलने शुरू हो जाती है, और फिर लगता है कि मेरे को सहन करना पड़ता है, मुझे सुनना पड़ता है, हाँ, मेरे को ही क्या क्या करना पड़ता है, तब ये थॉट्स आते हैं। तो हम अपनी मनोस्थिति को, अपने सोच को इतना प्योर, इतना पावरफुल रखें कि हमें ये लगे ही नहीं कि हमने सहन किया। भले आपने सहन किया लेकिन आपने उसको महसूस ही नहीं किया, वो तब होता है जब हम इतना अतीन्द्रिय सुख में, आंतरिक सुख में, ईश्वरीय मौज में समाये रहते हैं। वैसे भी देखो इतिहास भी इस बात का साक्षी है, धर्म आत्माओं ने भी, महान आत्माओं ने भी जीवन में बहुत कुछ सहन किया, सूक्ष्म भी किया, स्थूल भी किया, लेकिन उनको भी वो सहन करना सहन नहीं लगा, वो कष्ट दूसरों को दिख रहा है, इसको कष्ट हो रहा है, लेकिन उसको वो कष्ट नहीं लग रहा, तब तो वो सहन खुशी खुशी कर रहा है ना। भले दूसरों को लगे कि ये आत्माएं देखो कितना सहन करती हैं, मान अपमान, निंदा स्तुति, हाँ योगी के लिए तो कहते हैं ना सब बातों में समान, तो दूसरे को भले लगे ये सहन कर रहा है, लेकिन आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैंने सहन किया तो मेरी ये ताकत है, तब कहेंगे मेरी ये ताकत है। जैसे दंगल मैदान में आने वाला, कुश्ती लड़ने वाला, उसको तो मजा आ रहा है उसके अंदर, दूसरे को लग रहा है बड़ी उठपटाई हो रही है इसकी तो बहुत ज्यादा, उसको नहीं लग रहा, उसको तो खुशी हो रही है उसके अंदर। ऐसे ही हमको अपने जीवन में उसके अंदर खुशी का एहसास हो, प्राप्ति का एहसास हो, कष्ट का एहसास ना हो, तो कहेंगे हमारी ये सहनशीलता है, सहन शक्ति है। तो जितना हम ईश्वरीय सुख की फीलिंग में बाबा की याद से अंतरात्मा उसको महसूस करती है तो सहनशीलता आती जाती है। दूसरी बात है, बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे आप त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हो, मैंने तुम बच्चों को तीनों कालों का ज्ञान दिया है, राइट है? आप सब कौन बैठे हो? त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिकालदर्शी। रोज मुरली में हम पढ़ते हैं बाबा हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, तीनों कालों की हमको पहचान है, सारा विस्तार हम अच्छी तरह जानते हैं। तो मुझे भी स्वयं को मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज पर चलते हुए कर्म करना है। एक दर्शी नहीं बनो, एक दर्शी बनते हैं ना, माना सिर्फ आज को देखते हैं, वर्तमान को देखते हैं, तो कठिन लगता है, तो प्रश्न उठते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या मैं ही सहन करूं, तो लगता है ये गलत है, ये राइट है, तो ख्याल आता है कि ये तो अन्याय है, बाबा को ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ऐसा होता तो भगवान कहता नहीं, आप अन्याय है, आप क्यों सहन करो। क्या किसी मुरली में ऐसा आया? आया? कोई कोई बाबा के बच्चे ऐसे शब्द भी बोल देते हैं, अन्याय नहीं सहन करेंगे, या कोई कोई सोचते हैं क्यों ये सहन करना, रॉन्ग चीज को सहन करना, राइट को तो कर लेंगे, रॉन्ग चीज को सहन करना तो कायरता है। बाबा ने किसी मुरली में कहा है कि ये रॉन्ग है इसलिए सहन नहीं करो, डंका बजाओ? नहीं। यहाँ तक कि बाबा कहते अगर सत्यता भी है, सत्यता कहनी भी है, तो उसकी भी सभ्यता है। ऐसे ही नहीं कि मैं क्यों सहन करती रहूं, मैं तो सच बोल के दिखाऊंगी, इसका बंडा फोड़ करके रहूंगी। क्या क्या थॉट्स आ जाते हैं ना, आप सब में नहीं आते होंगे, मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, लेकिन अगर ऐसा भी सुनने को मिलता है, हाँ, या कोई को कभी थॉट आता है, तो कभी भी ऐसा मत सोचना, ऐसा सोच हमारी ताकत को घटाता है, कभी भी हमारी सहन शक्ति को बढ़ने नहीं देगा, और फिर बाद में पश्चाताप होता है, यहाँ तक कि धोखा भी हो जाता है, कहते हुए फालतू ही पचड़े में जाके अपनी अवस्था खराब कर बैठा। हाँ, सत्यता देनी है तो उसकी विधि है, कहाँ देनी है, कैसे देनी है, सभ्यता से करना है, वो भी बाबा ने सिस्टम बताई है, तो ऐसे ही चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप त्रिकालदर्शी बनकर चलो, तीनों काल सामने रखो, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है, आप तीनों अच्छी तरह से जानते हो या नहीं जानते हो? हाँ, पता है ना प्रेजेंट आपका क्या है और फ्यूचर आपका क्या होगा? नहीं पता। और 63 जन्म क्या क्या करके आए, हाँ वो भी पता है। उसी बोझ को उतारने के लिए तो हम देखो इतनी योग तपस्या कर रहे हैं, यहाँ बच्ची कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, अपना खाता कितना जमा कर रहे हो, हाँ कितनी आत्मा को शक्तियाँ बाबा की याद से भर रहे हो ना, इसीलिए तो देखो इतना पुरुषार्थ करके आप सब यहाँ पहुँचे हैं। रोज की दिनचर्या में भी करते ही रहते हैं, किस लिए? इसीलिए ना कि मैं एक ऐसी श्रेष्ठ तपस्वी, ऐसी पुण्य आत्मा, महान आत्मा बन रही हूँ, दिव्य आत्मा बन रही हूँ, मेरा भविष्य क्या है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये बुद्धि में स्पष्ट है। बाबा हमें रोज मुरलियों में कहता, अभी 5-6 दिन पहले की एक मुरली थी, 7-8 मुरली में बाबा ने कहा, मैं गारंटी करता हूँ तुम मुझे याद करेंगे तो मैं विक्रम विनाश करूंगा। अब ये पॉइंट हम सबको पता है, कोई नई पॉइंट नहीं है, लेकिन जब हम मुरली सुना रहे थे, हमने जब उससे पहले पढ़ी, ये पॉइंट पहले भी पता थी, लेकिन अंतर आत्मा अंदर से ऐसा महसूस करती है कि भगवान कहता है मैं गारंटी करता हूँ। आप सोचिए, भगवान कहता है मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, क्योंकि 63 जन्म हमने बहुत से विक्रम सिर पर लिए हैं, वो बोझ उतारना है, तो वो बोझ कैसे उतरेगा? बोझ चढ़ाना नहीं है, उतारना है। जिस पर पहले ही बोझ हो और अभी भी सहन न करे तो बोझ चढ़ेगा या उतरेगा, बोलो? तो दादियां इन बातों को शुरू में ही बच्ची के समय ही महसूस कर लिया था उन्होंने, इसलिए बोझ चढ़ाने वाली कोई बात उन्होंने होने नहीं दी कि मेरे जीवन से, मेरी मनसा से, मेरी वृत्ति से, मेरी वाचा कर्मणा से बोझ चढ़ने वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए, चाहे मुझे कितना ही सहन करना पड़े। समझा? यह है सहनशीलता की सूक्ष्मता। तो सहन करना फिर मुश्किल नहीं लगता, खुशी होती है, खुशी होती है। अगर हमें खुशी नहीं होती है तो समझ लो मैंने सहन किया ही नहीं। अगर मैं सहन करती हूँ, सचमुच कर रही हूँ, तो मुझे उसके रिटर्न में खुशी महसूस होनी चाहिए, शक्ति महसूस होनी चाहिए, बल महसूस होना चाहिए। वैसे भी देखो आपको अनुभव ही होगा जीवन में कि कहीं आपका हक बनता है या कहीं किसी ने आपका अपमान किया है और आपने अपनी अवस्था अच्छी रखी, आपने सहन कर लिया, तो आपको क्या महसूस होता है? अंदर लगता है आज मैंने बहुत अच्छा किया, लगता है या नहीं? मैंने बहुत अच्छा किया, खुशी होती है या नहीं? ये अनुभव भी होगा आप सबको कि जब आप चुप रहे, आप शांत रहे, आपने शुभ भावना रखी, आपने दिल में कोई गैर नफरत कुछ फीलिंग नहीं आने दी, तो आपकी अंतरात्मा अंदर से एक सुकून महसूस करती है, करती है ना? क्यों? क्योंकि आपने एक ईश्वरीय आज्ञा का पालन किया और ये समझ लो क्योंकि हम भगवान के कहने पर कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर रहे, कोई दब दब के नहीं कर रहे। मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ आपको जो कई बार कईयों के मन में, जो मैं पहले सुना चुकी हूँ, हाँ समझते मैं ही दबता रहूं या ये कायरता है, ये अन्याय है। मुझे ये ईश्वरीय आज्ञा हुई है। दुनिया में तो मनुष्य मनुष्य के कहने पर भी सहन कर लेते हैं, समझा? किसी भी क्षेत्र में देख लो, किसी भी क्षेत्र में, समाज के भी किसी भी क्षेत्र में देख लो। और हम भगवान के बच्चे तो ईश्वरीय आज्ञा पर कर रहे हैं, तो हमारा खाता जमा हो रहा है। ईश्वर किसकी रखता नहीं है, उसका रिटर्न देता है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें तो उसके भी नंबर मिलते हैं, रिटर्न मिलता है, तो खुशी होनी चाहिए ना। अगर मुझे खुशी होती है तो समझ लो मेरे में सहनशीलता है। अगर मुझे खुशी नहीं होती है, दुख की फीलिंग आती है, तो अभी मैं कमजोर हूं। इसलिए हमेशा बुद्धि में रखो कि ये श्रीमत मुझे मिली है, मैं श्रीमत का पालन कर रही हूं, मैं सहन नहीं कर रही, ये ईश्वरीय आज्ञा है, तो ये मेरा कितना सौभाग्य है, मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हुई जो मुझे ये ईश्वरीय आज्ञा पालन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जो मेरे आगे ये परीक्षा आई। क्योंकि कईयों के मन में ये भी आता है, मेरे आगे क्यों ये सारी बातें आती है, मुझे ही क्यों तंग करते हो, मैं ही रह गई हूँ क्या? हाँ, लौकिक में भी कह देते हैं, मेरे आगे कोई परिस्थितियां क्यों आती हैं? कई बार कई माताएं रोती हुई आएंगी, कहेंगी सारे ही मुझे तंग करते हैं, बहू भी मुझे तंग करती है, पति भी मुझे तंग करता है, बच्चे भी मुझे तंग करते हैं। उस समय याद करो, ये सहनशीलता के लिए आपको कहा किसने है, किसने बोला है? वो नहीं जानता, बताओ, वो नहीं जानता हा? उसको तो ये भी पता है बांधेलियों को कितनी मार पड़ती है, सबका सब कुछ पता है। उसको नहीं पता आज की कलियुगी दुनिया में धन कमाना कितना कठिन है, बताओ, शिव बाबा को पता है या नहीं पता? फिर तो ऐसे थॉट्स लाने की जरूरत नहीं है, यही थॉट्स हमें सहन करने में विघ्न डालते हैं, ये समझ लो। परंतु इससे मेरा खाता जमा हो रहा है, बन रहा है और बोझ उतर रहा है, ये भी बुद्धि में हमेशा याद रखो। तो जब ये याद होगा तो आपको खुशी महसूस होगी, हमारा बोझ उतर रहा है, ठीक है, आत्मा हल्की हो रही है। नहीं सहन करेंगे तो बोझ उतरेगा नहीं, ये समझ लो। और थोड़ा अंतर्मुखी भी रहना चाहिए। यहाँ आप 3 दिन अंतर्मुखी हैं ना, हा? मौन भी रख लिया होगा। अंतर्मुखी माना कि बाह्यता में ज्यादा नहीं जाओ, ये नहीं बोलो नहीं देखो नहीं, उतना ही बोलो जितनी जरूरत है, उतना ही देखो जितनी जरूरत है, उतना ही सुनो जितनी जरूरत है। ये 14 वर्ष जब बठ्ठी चली यज्ञ की स्थापना में, तो बाबा ने दादियों को यही ट्रेनिंग दी, यही उनकी जीवन उस समय बनी। तो हमें भी तो बनानी है ना, भले अभी आपने 3-4 दिन की बठ्ठी कर रहे हो, अभी तो और ही सहज है सब कुछ ना। हमें भी तो कर्म व्यवहार में रहते, हाँ, सेवा के क्षेत्र में रहते, हाँ, परिवार में आप सभी हैं, अपनी जीवन को ऐसा बनाना ही होगा। बाबा ने हमें भले कर्म योगी बनाया है तो इसका यही मतलब है कि कर्म तो करना है लेकिन उतना जितना आवश्यक है। ज्यादा विस्तार में जाते हैं तो समस्याएं आती हैं, बहुत व्यर्थ आता है। कोशिश करो अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बनाओ, उतना देखो जितना चाहिए, उतना सुनो जितना चाहिए, उतना जैसे खाना जितना चाहिए खाते हो ना। अक्ल है ना सबको, कितनी अक्ल है आजकल तो सचमुच, हमें भी इतनी अक्ल नहीं होगी जितनी सब सुनाते हैं। हाँ, कहते बहन जी अभी खाने के बाद पानी क्यों पी रहे हो, आपको पता नहीं है ये नुकसान करता है। मैंने कहा नहीं पता। देखो कितनी समझ है, बॉडी की इंटेक क्या चाहिए कितनी समझ है, और आत्मा की इंटेक क्या चाहिए, जीरो है एकदम। दुनिया वाले मालूम है ना, और इसलिए झगड़े फसाद समस्याएं क्या क्या है, यही कारण है। उसका विस्तार बहुत है, मैं उसको क्यों एक शब्द से ही आप समझ गए होंगे। तो मेरी इंटेक क्या है, उससे नेचुरल हमारी लाइफ ऐसी होती है हमें सहन करना महसूस ही नहीं होगा। बस अपनी इंटेक आत्मा की चेक करते रहो, फालतू की चीज लो ही नहीं, देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं। जिसको बाबा कहता ना, देखते हुए नहीं देखो, हाँ सुनते हुए नहीं सुनो, ये है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता ही नहीं, चुप हो जाओ बस एकदम। यहाँ ठीक है, घर में भी बीच बीच में मौन ठीक है, लेकिन मैं चुप हूँ, आंखें मेरी चल रही हैं। अच्छा ये वहां क्यों बैठी है, अरे भाई मुंह से तो मैं चुप हूँ, आंखें मेरी चल रही हैं, हाँ दिमाग भी चल रहा है, तो इनटेक तो हो गया ना, रॉन्ग इनटेक हो गया ना। तो बाबा हमें जो कहता है देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, इसका भावार्थ यही है वास्तव कि जिस बात की जरूरत नहीं है उस पर ध्यान न जाए, तो उससे हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ती है और अंतर आत्मा अपनी शक्ति स्वरूप की स्टेज पे रहती है। फिर जो बातें होती है ना, वो ऐसे कहते हैं ना, इसके तो सिर के ऊपर से चला जाता है सब। तो जो हमें चाहिए ही नहीं वो सिर के ऊपर से ही चला जाए, आपको सहन करना लगेगा ही नहीं, सचमुच नहीं लगेगा। मैं अनुभव से कह रही हूँ ये बात ना, दूसरे को लगेगा अरे इसको तो कोई फर्क ही नहीं है, तो वैसे ही मुस्कुरा रहा है। हाँ? अभी देखो दुनिया में भी कहते हैं कई 56 भोग खाके भी दुखी रहते हैं और कई सूखी रोटी खाके भी सुखी रहते हैं, दुनिया की कहावत है ये। और हम तो हैं ही बाबा के ईश्वरीय मौज में रहने वाले, 56 भोग और सूखी रोटी एक समान लगती है या नहीं लगती? हाँ? या कभी कोई सब्जी कम देगा तो रोना आ जाएगा? हाँ? या एक को टोली दे दी दूसरे को नहीं मिली? हाँ? छोटी छोटी बातों की फीलिंग, छोटी छोटी बातों की फीलिंग, बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये भगवान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर त्रिकालदर्शी, छोटी छोटी बातों की क्लासेस में फीलिंग लेके आ जाते हैं। इसको पूछा मुझे नहीं पूछा, इसको चांस दिया मुझे नहीं दिया, इसको आगे बिठाया मुझे नहीं बिठाया, ये ऐसे था वो ऐसे था। ये थॉट्स हमारी कमाई को घटाते हैं, समझ लो, ये थॉट्स हमारी कमाई को घटाते हैं। और संगम युग कमाई का युग है, फिर आपको सहन करना बुद्धि में पक्का रखो, ये कमाई का युग है। तो कमाई करने वाला तो बहुत कुछ दुनिया में सह जाता है। हाँ, हमने पहले सुना है ना, रात को भी जागना पड़े सह जाता है ना। तो हर पल मेरी कमाई हो रही है, ये मेरी कमाई का जीवन है, मैं 21 जन्म का खाता जमा कर रही हूँ, बल्कि 84 जन्मों का खाता जमा कर रही हूँ। तो आपको जरा भी सहन करने का एहसास नहीं होगा, मना सहन शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी, और तभी जीवन सुखमय महसूस होता है। नहीं तो कईयों का चेहरा ही बड़ा उदास سوچ والا, کنفیوز, ڈسٹرب. اب ہم بابا کے بچوں کو یوگی جیون والوں کا چہرہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے میں دکھائی دوں میں ڈسٹرب ہوں, بڑی کنفیوز ہوں, کئی بار تو کہہ بھی دیتے میں بہت کنفیوز ہوں. تو یہ بابا کچھ اچھا نہیں لگتا. جب ترکال درشی اسٹیج پہ ہوں گے تو کبھی کنفیوژن, ڈسٹربنس نہیں آئے گی. ایک اتہاس میں آتا ہے, ایک وتان 17ویں شتابدی کی بات ہے, یہ جاپان کے سمراٹ کی, لوکک سنسار کی, دیکھو باتیں. اس کے پاس ایک اس کے کیبنٹ میں, منتری منڈل میں پرابلم آئی, یہ ریئل گھٹنا ہے, اور اس کا کوئی سولوشن نہیں نکل رہا تھا. تو منتری منڈل میں سے ایک منتری نے سمراٹ کو رائے دی کہ ہمارے منتری منڈل میں ایک منتری ہوا کرتے تھے اور ابھی وہ بہت وردھ اوستھا میں ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, اپنے گھر پریوار میں رہتے ہیں, تو آپ ان سے رائے کیجئے. تو راجا بولے, کیوں تم اتنے سارے منتری ہو اور اتنے مہینوں سے ڈسکشن چل رہی ہے اور آپ حل نہیں نکال پا رہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو منتری رہے پیچھے, ان کی لائف کا ایکسپیرینس ایسا ہے, ان کے پریوار میں ہزار سے بھی زیادہ سدسیہ ہیں, اتنی جوائنٹ فیملی ہے ان کی, اور اتنی بڑی پوزیشن پہ وہ رہے, اور ان کے فیملی میں اور بھی کئی ایسے ہیں جو بہت بڑی بڑی پوزیشن پر ہیں, لیکن آج تک ان کی فیملی کی کوئی پرابلم, کوئی ایسی بات نہیں. تو جوائنٹ میں 100 باتیں ہوتی ہیں باہر آ جاتی ہیں, ہوتا ہی ہے نا. آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہو نا, دھن کے کارن, پوسٹ کے کارن, بھائی بھائی کی, ماں باپ بیٹے کی, تو ان کی آج تک ایک بھی بات باہر نہیں آئی, کوئی سمسیا سننے میں نہیں آئی. نہ ہوتی وہ باتیں تو ہو ہی نہیں سکتا نا, سب بھن بھن سنسکار والے ہوتے ہیں. تو راجا کو یہ بات بڑی اپیل کی, کہا اچھا میں جا کے رائے کرتا ہوں. تو گئے راجا ان کے گھر, تو وہ منتری بھی بڑے آشچرے میں پڑ گئے کہ راجا سوئم چل کر میرے گھر آئے ہیں. تو ان کے گھر کے پریوار کے سدسیوں نے راجا کا آبھگت کی, خوب سواگت کیا, اور اس بیڈ روم میں لے گئے, کیونکہ منتری اتنی وردھ اوستھا میں تھے کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے زیادہ, اور اسی لیے وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے کافی ٹائم سے منتری منڈل سے. تو سمراٹ نے جب ان کے پاس بیٹھے تو سب کو اشارہ کیا, ابھی چلے جاؤ باہر سب. پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ میں آج یہ راز جاننے آیا ہوں کہ آپ کے پریوار میں ایسی کیا بات ہے جو مجھے سب نے سنایا ہے. تو منتری کچھ بول نہیں پائے, ان کی بولنے کی بھی وہ کم ہو گئی تھی, چپ رہے اور بیل بجائی, اپنے اسسٹنٹ کو بلایا, اشارہ کیا, کاغذ پین وہ لے آیا, اور منتری نے اس کاغذ پین پر لکھنا شروع کیا, اور 2 منٹ میں پیپر سارا بھر دیا اور وہ پیپر راجا کے ہاتھ میں تھما دیا. کہا یہ آنسر ہے آپ کی ساری باتوں کا. راجا نے, راجا کو بڑی خوشی ہوئی, دیکھوں کیا لکھا ہے. تو جیسے ہی راجا نے وہ پیپر دیکھا اور پڑھنا شروع کیا تو سارے پیپر پر ایک ہی شبد بار بار لکھا ہوا تھا, سہن 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 سہن. 10-15 بار لکھ کے منتری نے وہ پیپر ان کے ہاتھ میں دے دیا. تو راجا پڑھتے ہی سمجھ گیا اور اس پیپر کو لپیٹا, اپنے پاکٹ میں ڈالا اور کھڑا ہو گیا. اچھا, اور جا کے اپنے منتری منڈل میں یہی بات پکی کرائی کہ یہ سمسیا تب تک نہیں سلجھے گی. تو سمجھا, ساری باتوں کا حل ہی یہی ہے. آج کیوں نہیں حل ہو رہا پریواروں میں, سماج میں؟ کیونکہ یہ طاقت ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کرتے ہیں لیکن پورن روپ سے یہ طاقت نہیں ہے. آج ہم بابا کے بچوں کے اندر, بھگوان نے ہمارے اندر یہ طاقت بھری ہے, اور تبھی آپ سو پریورتن کر پا رہے ہو, اور تبھی آپ وشو پریورتن کر پا رہے ہو. اگر ہماری یہ طاقت نہیں ہوگی تو سو پریورتن کیسے ہوگا, وشو پریورتن کیسے ہوگا؟ بنا سیم کیے ہو سکتا ہے؟ اس جیون کے اس سفر میں یہاں تک بھی جو آپ پہنچے ہو وہ سہن شیلتا سہن شکتی کے آدھار سے پہنچے ہو, پر اس میں آپ تھوڑی سی بھی اس میں آپ گھبرا جاؤ تو یہ شوبھا نہیں دیتا, یہ شوبھا نہیں دیتا. تو سویم کو ایسے سمجھو, میں سہن شیلتا کی دیوی ہوں, سہن شیلتا کا دیو ہوں. بس پھر ذرا بھی مشکل تو کیا, ٹوٹل ایک ہمارا سوبھاؤ بن جائے گا, سنسکار بن جائے گا. جو چیز نیچر میں ہوتی ہے وہ اپنے آپ ہو جاتی ہے, اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی. جیسے شانت رہنا نیچر بنتی جا رہی ہے نا, بن رہی ہے نا, کیونکہ شانتی کی شکتی آپ نے جمع کی ہے اپنے اندر, اور جتنی ہماری وہ شانتی کی شکتی جمع ہوتی جاتی ہے, مکھ کھلتا نہیں, کرودھ ہوتا نہیں. ہاں کوئی دلائے بھی تو کہتے دل نہیں کر رہا بولنے کا. ایسی نیچر, ایسی ہماری سہن شیلتا کی میں دیوی ہوں, ایسے نیچرل نیچر ہو جائے تو ہماری ایڈجسٹمنٹ ہوتی جائے گی. ایڈجسٹمنٹ پاور بھی سہنشیلتا لے آتی ہے, وہ بھی آپ سمجھ کے چلو, کیونکہ ہر ایک کے سنسکار الگ الگ ہیں, ایک کے نہ ملے دوسرے سے. گھر میں دو بچے ہیں, دونوں کے سنسکار الگ ہیں, پھر آپ دوسروں دنیا والوں سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ یہ میرے انوسار کیوں نہیں کرتا؟ میں باس ہوں, میرا اسسٹنٹ میری اکارڈنگ کیوں نہیں چلتا؟ میں ماں ہوں, میں ساس ہوں, یہ میری اکارڈنگ کیوں نہیں چلتے؟ نو, بالکل نہیں. ہر ایک کا رول الگ, ہر ایک کے سنسکار الگ, ہر ایک کی سوچ الگ. ایون جیسے برہما بابا کے اندر بہت امنگ اتساہ, بڑی رونق, مما اتنی شانت اتنی گمبھیر, بات مت پوچھو. تو بابا یہ تھوڑا کہتا تھا مما آپ ہنستی کیوں نہیں ہو, مجھے بڑا برا لگتا ہے, ایسے تھوڑا. بابا جانتا تھا مما بہت گمبھیر ہے, ایسے سہج نہیں ہنسے گی, مسکرائے گی. جی بابا, جی بابا, مسکرائے گی ضرور, ایسے بھی نہیں میرے کنیا منہ ایسے بنا کے, نہیں نہیں. ہمیشہ مما جتنی گمبھیر اتنی مسکراتی تھی. بابا تو پھر ڈانس بھی کرتا تھا ایسے, تو دیکھو ہے نا, پارٹ ہے نا, مما کا اپنا پارٹ کتنا یونیک, بابا کا اپنا پارٹ کتنا یونیک. تو سہج, کتنا سہج, جو سب کو خوشی ہوتی ہے, سب کو پراپتی محسوس ہوتی ہے. تو ہم کہیں کہیں اٹک جاتے ہیں, یہ ایسے کیوں نہیں چلتا, یہ ایسے کیوں نہیں مانتا, یہ ایسے کیوں نہیں کرتا. اب میرا بچہ تو 100% مارکس ہی آنے چاہیے, اس کے 90 سے کم لایا تو پھر دیکھنا ذرا. سارے گھر میں ٹینشن, وہ نہ وہ سہن کر پاتا ہے, نہ ماں باپ سہن کر پاتے ہیں,
फिर वो वायुमंडल बनता है, कितनी कितनी बातें। तो मन को समझाओ, हर एक के पार्ट को समझो। इसीलिए हमने पहले कहा त्रिकालदर्शी, ठीक है। और सहन कर क्यों नहीं पाते, उसके भी कुछ रीजंस होते हैं, वो ढेर रीजंस है, मैं उनका वर्णन नहीं करना चाहूंगी। मैं समझती हूँ टाइम भी हो रहा है, कितने बजे तक क्लास पूरा करना है? हाँ, तो टाइम भी हो रहा है। कहीं कहीं हमारी सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं, कहीं कहीं हम किससे तुलना करना शुरू कर देते हैं, संस्कार होता है। कहीं कहीं हमारा मैंपन भी होता है, ऐसी बातें भी हमें सहन करने की शक्ति हमारी बढ़ती नहीं है। बाबा हमें दे रहा है वो ताकत, ऐसे नहीं दे रहा बाबा, हम सब बच्चों को दे रहा है। इसलिए बाबा आपको उसी देवी देव रूप में देखते हैं, सहनशीलता की देवियां हैं। तो इसका विस्तार भी बहुत है, लेकिन ये सूक्ष्म आप समझ जाओ, ये बातें भी हमारी सहनशीलता को घटाती हैं। और बाबा ने तो हमको कहा है बच्चे कैसे चलना है, ठीक है ना, किस रूप से चलना है। तो ये सब अब जरूरत नहीं है हमको इन सब बातों की। जरूरत है इच्छा रखने की, कुछ जरूरत है किसी से तुलना करने की। तुलना तो तब करो जब आप उन जैसा बनना चाहते हो। आप किन जैसा बनना चाहते हो? बाबा जैसा, मम्मा जैसा, तो दूसरे से क्यों तुलना कर रहे हो? इसके पास ये तो मेरे पास ये ऐसे तो वो ऐसे, तो सहनशीलता नहीं आती है। तो ये संस्कार अब नहीं जरूरत, अब समय के अनुसार भी मैं आपको बताऊं जरूरत नहीं है, सच बताएं। अब तो अपने को भरपूर करते जाओ, भगवान जो दे रहा है उसमें कहीं कमी ना रह जाए लेने में, ये लक्ष्य रखो बस, कि मुझे अपने जीवन को अधिक से अधिक ईश्वरीय प्राप्तियों से, ईश्वरीय खजाने से भरपूर करना है। और भरपूर आत्मा हमेशा संपन्न, स्थिर और सुखी रहती है, बस। फिर सहन करना भी आपको महसूस नहीं होगा, नेचुरल होता चला जाएगा। ये भी आपकी एक स्टेटस बन जाएगी, स्टेटस इन द सेंस ऐसी ऊंची अवस्था बन जाएगी जो आपको महसूस ही नहीं होगा, और लगेगा वाह, जैसे बड़े आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते ना इनको क्या फर्क पड़ेगा। तो आप सब कौन हो, हाँ कौन हो बोलो, ऐसे बड़े आदमी, अरे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, ऐसी हमारी सहनशीलता, सहन शक्ति नेचुरल नेचर है, ठीक है। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत महत्वपूर्ण विषय था, मैं समझती हूँ सबको ये लग रहा है कि बहुत काम की बात है ना, ऐसा ही है ना। तो बहुत ही प्यार से जोरदार करतल ध्वनि से धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत काम के टिप्स मिले हैं सबको, और सबके घरों में अगर ये वाली शक्ति ठीक से आ जाए, सहनशीलता के अवतार बन जाएं सभी, तो बाबा को प्रत्यक्ष होने में सबको मालूम है एक सेकंड लगेगा। तो प्रत्यक्षता के आगे पर्दा है ये सहनशीलता का न होना। लोग हमारी सहनशीलता के अभाव में हमारे से सवाल पूछते, अच्छा यही कहते हो भगवान पढ़ाते हैं। तो आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत आभार है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को आपने बहुत सरल शब्दों में सबके हृदय के अंदर उतार दिया है। ये वाला क्लास सभी आज रात सोने से पहले दोबारा अवश्य पढ़ेंगे, ताकि इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है आप इसको नोट करके जाएं कि अब के बाद घर जा करके आप किस किस पॉइंट पर अंडरलाइन करके उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल किए बिना तो सुनना तो सबको अच्छा लगता है। हम सभी याद की यात्रा में बैठेंगे, दो मिनट पहले साइलेंस करेंगे।
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
खुशियों के गीत सदा
दिलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा।
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
अजमा में कामयाबी तू झुकाए जा।
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा।
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा।
खुशियों के गीत सदा